हरे कृष्णा। तो हरिवार को सब सुबह 10:30 से 12:30 संडे फीस्ट प्रोग्राम यानी कि रविवार या सत्संग कार्यक्रम होता है। तो 10:30 से 11 जैसे कीर्तन हुआ, 11 से 12 यहाँ पे कथा होगा और 12 बजे महाआरती और उसके बाद प्रसाद महाप्रसाद सबको मिलेगा। तो जो कथा है तो आज के प्रवचन करता है श्रीमान तरुण निताय प्रभु। आज के सत्संग का विषय कृष्ण कथा की महिमा के बारे में है। तो कृपया 10:30 से 11 जैसे कीर्तन हुआ, 11 से 12 हमारा कथा होगा बाय हिज ग्रेस तरुण निताय प्रभु द्वारा। हरे कृष्ण। जेंट्स लोग कृपया उस साइड बैठ जाइए, लेडीज लोग आप आगे आ सकते हैं तो पीछे जमा हो सकते हैं।
उनको बोला ऊपर बैठ सकते आप, कथा कथा करना है क्या आपको? पता हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंजा बिहारी। जय राधा माधव कुंजा बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन ब्रजजनरञ्जन यशोदनन्दन ब्रजजनरञ्जन यशोदनन्दन ब्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी। जयो राधा माधव कुञ्जबिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Radha Vrindavan Bihari Radha Vrindavan Bihari Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Shri Harinam Sankirtan Ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Narayam Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudire Nashta Praye Swabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishthaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Hare Krishna तो आप सबका यहाँ पर रविवारी है जो ये संडे फिस्ट प्रोग्राम है हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं गोवर्धन इको विलेज में तो लगभग अगले 40-45 मिनट हम भगवान की विविध लीलाओं का श्रवण करेंगे और आज इस कथा का विषय भी कृष्ण कथा की जो महिमा है उसके ऊपर हम चर्चा करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे तो सर्वप्रथम हम स्पष्ट कर देते हैं कि कृष्ण कथा इसका अर्थ ऐसा नहीं कि केवल भगवान की लीला है उनका कथन करना परंतु कृष्ण कथा का अर्थ कृष्ण के नाम उनके विविध जो गुण है उनका सुंदर जो रूप यहाँ पर दिख रहा है उनकी लीलाएं और साथ ही उनके जो परिचारक हैं शुद्ध भक्त हैं उनकी सारी मंदिर है तो कोई वस्तु का जो कृष्ण से संबंधित है उसका भी जब गुणगान करते हैं तो उसे कृष्ण कथा कहा जाता है तो ऐसा नहीं कि केवल कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया या किसी सांप का वहाँ से उसे कालिया को भगाया या बहुत सारी अद्भुत लीला की हैं उन लीलाओं का कथन यानी कृष्ण कथा नहीं है वो भी कृष्ण कथा है परंतु साथ में जब उनके नाम का गुणगान होता है उनके गुण का गुणगान होता है उनकी सुंदर रूप का गुणगान होता है उनके साथ जो भक्त जुड़े हैं जो साधन सामग्री हैं हर वस्तु उनसे जो संबंधित है उसके बारे में कथा करना कृष्ण कथा जो है कहलाता है और कथा केवल कहनी नहीं है कहने के साथ साथ कथन के साथ साथ श्रवण भी कथा है और भगवान का स्मरण भी कथा ही है तो ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं कृष्ण कथा कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं तो आप कृष्ण कथा नहीं करें नहीं सुनने वाला भी कृष्ण कथा में है और जो स्मरण करेगा वो भी कृष्ण कथा का ही स्मरण कर रहे हैं। तो हर कार्य भगवान से संबंधित, वो कथा करे सुने या स्मरण करे, वो कृष्ण कथा है। ये तीनों भी चीज आपको, वो जो कृष्ण कथा की महिमा है उसके बारे में हम देखते रहेंगे। तो एक बार ऐसे ही मंदिर में एक व्यक्ति रोज आता था और एक भक्त जो भागवत कथा करते रोज कथा करते थे, देखे बड़ा निकम्मा है, आलसी है, क्लास में भी आके सोता है। तो जैसे वह प्रवेश करता था बोल देते थे आ गया क्या, तो ज्यादा कुछ सुनता नहीं था, वो उतना ही सुनता था आ गया क्या, जैसे उतना सुना वो सो जाता था क्लास में। तो थोड़ी देर बाद एक कथाकार देखते थे वो सोया है, बीच में उसको उठाने के लिए बोल देते थे हाँ सो गया क्या, तोड़ जाता था, मेरे लिए बोला होगा क्योंकि मैं ही सो रहा, थोड़ा सुन लेता तो जग जाता था। और फिर उसको शर्म आती थी कि अरे क्लास में बैठ के सो रहा था, मेरे को देख लिया, सबके सामने बोल दिया। फिर उठ के खड़ा होकर निकलता था तो कथाकार बोलते तो जा रहा है क्या। तो रोज इसी प्रकार कई दिन तक वो जैसे आता था तो वो कथाकार बोलते आ गया क्या, बैठ गया क्या, सो रहा है क्या, जा रहा है क्या, तो उतना ही वो सुन रहा था काफी दिनों तक। तो सुन सुन के उसको ये सब याद हो गया। तो एक दिन अपने घर में सो गया था और अचानक से रोज ये सुन के वो रात में भी कभी नींद में ऐसे ही बोलता था कि आ गया क्या, बैठ गया क्या, सो गया क्या, जा रहा है क्या। तो एक दिन उसके घर में काफी चोर आए और वो डकैत आके डकैत डालने वाले थे, ये नींद में ही बोल रहे हैं आ गया क्या। तो सारे चोर बोले भाई इसको कैसे पता चला हम आ गए। तो अंदर फिर भी बोले अभी चोरी करने आए तो कुछ तो करना चाहिए, आके अंदर कहीं घुस रहे थे। तो उसने तुरंत बोल दिया आ गए, बैठ रहे क्या। तो वो फिर से डर गए कि इसको कैसे पता चला आके हम बैठ रहे हैं। फिर वो अचानक से बोल रहे वे जा रहे हो क्या। तो बोले अरे इसको सब कुछ पता चला, चोरी करके हम भागेंगे लग रहा है, ये तो पकड़ लेगा। तो तुरंत भाग के वहां से निकल गए। तो कहने का तात्पर्य है ये नींद में भी कथा के लिए जाता था और उसको याद कर लिया थोड़ा बहुत, तो उससे भी उसके बड़े घर में होने वाली चोरी डकैत जो बच गई। तो मान लो हम ध्यानपूर्वक अगर कृष्ण कथा करते हैं तो कितनी बचत हो सकती है। वो पैसों की तो होगी लेकिन अपने जीवन की बचत बड़ी महत्वपूर्ण है। तो अगला 45 मिनट हम इस प्रकार जो भगवान की कथा लीला गुण और नाम का जब गुणगान करते हैं उसका हमारे जीवन में क्या लाभ हो सकते हैं इसके बारे में हम सुनने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण ग्रंथ के रूप में कलयुग में हमें दिया गया है उसमें बहुत सुंदर श्लोक आते हैं। और सबसे प्रथम कहा जाता है कि जो भगवान की कथा या लीला है इनका श्रवण करने से या कथन करने से हमें सबसे प्रथम जो लाभ होता है वो क्या है, तो हम सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं कि पैसा बचाने के लिए कथा सुन रहे हैं हम, कथा सुनने से या कथा करने से सर्वप्रथम क्या लाभ होता है, तो हमें जो जीवन में दुख आने वाले हैं वो दुख जो है तुरंत दूर हो जाते हैं। तो भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में एक सुंदर श्लोक है, जन्म गुह्यम भगवतो ये एतत् प्रेतो नरः सायं प्रातः ग्रहणं भक्त्या दुख ग्रमाद विमुच्यते, जिसमें कहा है कि ये जो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं इसको अगर हम सुबह शाम सतत सुनते हैं श्रद्धा पूर्वक तो तुरंत हमें जो भी भौतिक दुख हमारे जीवन में आ रहे हैं उससे तुरंत मुक्ति मिल जाती है। तो ये कृष्ण कथा की महिमा है। अगर रोज या कभी कभी भी सुनते तभी भी जब इस कथा को हम श्रद्धा पूर्वक सुन लेते हैं तो तुरंत हमारे जीवन में जो दुख है उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। इसके बारे में बहुत ही सुंदर कथा शास्त्रों में आती है। तो एक बार दक्षिण भारत में एक तीर्थ स्थान है तुंग विद्या, जो तुंगभद्रा नदी है, तो उसके तट पर बहुत ही सुंदर स्थान है जहाँ पर एक बहुत तपस्वी ब्राह्मण जिनका नाम था आत्मदेव और उनकी पत्नी धुंडुली रहते थे। तो पति पत्नी दोनों बेचारे बहुत अलग स्वभाव के, जो पति था बहुत ही तपस्वी था, साधु वृत्ति का था, बहुत शास्त्रों पर श्रद्धा रखता था, और पत्नी एकदम विपरीत थी, जो बात बात में झूठ बोलती थी, अपने धर्म पति की बातों को सुनती नहीं थी, अपनी जितनी भी मैत्रीण या इनके साथ बात करते तो कुछ ऐसे ही कथा किधर के बात करते बहुत सारा समय गवाती थी। तो पति बहुत दिन जो है अपने पत्नी को समझा समझा के परेशान थे, फिर अंत में देखे क्या रे, एक तो पत्नी सुन नहीं रही है, ऊपर से कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसका जीवन सब कुछ होने के बावजूद भी दुखी था। तो एक बार चिंता करते करते दुख में जंगल में चला गया और सोच रहा था एक वहां पर तालाब के बाजू में बैठ के कि क्या करो जीवन में, घर जाऊं तो पत्नी को मेरी सारी कार्य में कोई इच्छा नहीं है, कोई रुचि नहीं है, कोई पुत्र नहीं है जिसको प्रशिक्षित करो और सारी मेरे पास जो विद्या है ज्ञान है उसको दे दूं, तो क्या करो। दुख में बैठे तो यहां वहां से एक साधु पुरुष जा रहे थे, जाते जाते देख लेते कि इस व्यक्ति के मुख पर काफी चिंता है, तो रुक जाते, पूछते हैं कि देखने से पता चल रहा है एक ब्राह्मण है बट काफी चिंतित हो, क्या हुआ। तो ब्राह्मण बोलता है देखो साधु ऋषिजमान कि मैं ब्राह्मण हूं, वैराग्य गुणधर्म है, परंतु घर में जब जाता हूं देखता हूं कि पत्नी को कोई आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं है, पुत्र नहीं है, तो बड़ा दुखी हूं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रह के पुत्र नहीं है तो रोज जीवन तो जीना है, घर में बच्चे नहीं तो बड़ा दुख होता है। तो वो ऋषि थे उसका हाथ देख लेते और बोलते बताने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है बट दुर्भाग्यवश तुम्हारे जीवन में 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं लिखा है, तो बहुत ही बड़ा दुखी हो जाता है कि भाई अभी ये जन्म का जो दुख है उसको संभाल नहीं पा रहा हूं, इन्होंने तो 7 जन्म की कुंडली बता दी, तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा तो और भी दुखी हो जाता है। लेकिन तुरंत बोलता है ब्राह्मण है, बोलता आप तो ऋषि है, इतनी तपस्या की, आप ऐसा कीजिए, कुछ ऐसी योजना कीजिए कि मेरा जो दैव है किसी प्रकार से बदल जाए और मुझे अभी पुत्र प्राप्त हो। तो ऋषि बोलते ये तो मुमकिन नहीं है। नहीं नहीं वो बोलता मैं सब ज्ञानी हूं और आप जो है आपकी शक्ति से वो कर सकते हैं। तो ऋषि बोलते ठीक है मैं वैसे व्यवस्था तो कर दूंगा, परंतु जो पुत्र आएगा वो केवल तुम्हें सुख नहीं देगा दुख भी देगा। लेकिन ब्राह्मण जो है आगे की बात नहीं सुन पाता है, सुन भी लिया तो उसे अनदेखा कर देता, क्योंकि पुत्र होगा ये खुशी इतनी बड़ी थी कि वो दुख देगा सुनने के लिए समय नहीं उसके पास, क्योंकि वो आनंद जो है कि बोल दिया ऋषि ने कि आपको पुत्र तो होगा परंतु सुख के साथ दुख का भी कारण बनेगा, बट वो सुनने को तय, मतलब सुन लिया फिर भी ना सुना जैसे सुना। और फिर वो खुशी खुशी बोलता है तो ये व्यवस्था आपने की है, तो उनसे एक फल ले लेता है, घर जाता है अपने पत्नी को बोलता है बड़ी खुशखबरी है ऋषि ने ये तपस्या से जो उनका फल है मेरे पास दिया है इसको आप ग्रहण करो, इससे हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो पत्नी जो पहले से उसको कुछ आध्यात्मिक चीजों में रुचि नहीं थी ऊपर से बोले ये बच्चा पैदा होगा उसको 9 महीना संभालो और उसके बाद उसको बड़ा करो, और भी उसको चिंता होने लगी, पहले ही कुछ रुचि नहीं है ऊपर से ये हमारे पति देव ऊपर से डाल रहे, खाओ बच्चा 9 महीना संभालो उसको पैदा होने के बाद फिर बड़ा करो, कौन संभालेगा। तो अपने जो दोस्त थे रोज के उनको बोलती है कि कुछ व्यवस्था करो, पति को ना तो नहीं बोल पाई लेकिन ये फल तो नहीं खाऊंगी अभी क्या करना है। तो सारी मित्र लोग आके उनकी बातचीत करते, तो उनकी एक छोटी बहन थी वो अपने भाई बहन को बोलते है कि कुछ दिन से मुझे भी पुत्र होने वाला है और लगभग कुछ समय पहले से ही मैं भी गर्भवती हूँ और पहले से मेरे को 2 पुत्र हैं, तो तीसरा पुत्र जो होगा मैं आपको दे दूंगी, तो जीजाजी को बोल देना आप तुम्हारा ही पुत्र है, तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, तो इसको अच्छा सुझाव लगता है। लेकिन ये तो ऋषि फल है इसको खाना तो पड़ेगा किसी को। तो फिर ये जो छोटी बहन है वो तो मुझे तो पुत्र हो रहा है, तो ये बाजू में घर में गाय थी उसको वो फल खिला देती है। समय निकलते जाता है 9 महीने हो जाते हैं, छोटी बहन को पुत्र हो जाता है, वो तुरंत अपनी बड़ी बहन को लाके सौंप देती है और साथ में गाय को भी एक बछड़ा हो जाता है, तो एक साथ 2 पुत्र। गाय का जो बछड़ा है वो जन्म तो लेता है लेकिन शरीर जो है उसको मनुष्य का प्राप्त होता है क्योंकि वो ऋषि फल था, और गाय के गर्भ से जन्म लिया इसलिए उसके केवल कान जो है गाय की तरह, इसलिए उसको नाम दिया जाता है गोकर्ण। और ये धुंडुली थी जो वो आत्मदेव की पत्नी थी, क्योंकि धुंडुली जो अपने पति का कुछ नहीं सुनती थी तो पुत्र का नाम भी वो धुंडुकारी देती है, जो न सुनने वाला हो, वो नहीं सुनती थी तो पुत्र भी न सुनने वाला, धुंडुकारी कोई कार्य नहीं करेगा आज्ञा के अनुसार। और फिर ये पुत्र क्योंकि इतने तप के बाद ऋषि के प्राप्त हुआ था तो आत्मदेव बड़े प्रेम से उसको बना रहे थे, और दूसरे शब्दों में कहे तो बिगाड़ रहे थे। तो बड़ी प्यार के कारण गलत आदतें उसको लग जाती है, क्योंकि पिता कुछ बोल नहीं रहे, माता तो पहले से कुछ आध्यात्मिक चीजों में रुचि नहीं रखती थी, तो इतने बुरे संस्कार उसको मिलते हैं। समय के साथ वो इस स्तर पर जाता है कि घर में जो भी उस ब्राह्मण के तहत सब बेच देता है। यहाँ तक कि एक दिन पिता आरती कर रहे थे, आरती खत्म न है, उसने आरती का प्लेट उठाया, बेल उठाया, वो ग्लास आचमन सब उठाया और बोला अभी इसको जाके बेच रहा हूँ। बोला क्यों? कि कल बोला था पैसा चाहिए आपको, मैं अपने दिया नहीं कुछ, तो अभी इतना ही तो है, इसको बेच के पैसा ले लूंगा, आज का तो सुविधा हो जाएगा। पिताजी बोलते बाप ऋषि ने बोला तो दुख देगा, कि इतना दुख कि आरती भी नहीं कर रहे, तेरे उसको भी बेचने जा रहा है अभी ये। तो बोलते बेटा लेकिन इसको तो रखो, भगवान की सेवा करनी है इससे। बोला नहीं, जब तक पैसा आप नहीं देंगे इसको बेच के आ जाऊंगा, कल के लिए व्यवस्था करके रखना। तो चला जाता है, पिता बड़े दुखी होते हैं। फिर गोकर्ण जो गौ माता की कोख से जन्मा था, काफी गुणी था और गांव के आश्रम में जाके अपने गुरु के अंतर्गत इतनी अच्छी पढ़ाई किया, इतना ज्ञान प्राप्त किया, बहुत ही सद्गुणों से भरा था। उसे पूछ लेते क्या करें, कि एक पुत्र ऐसा और दूसरा पुत्र तुम ऐसा है, तो क्या करूं मैं? तो बोलते हैं कि हर एक का अपना कर्म है, गोकर्ण अलग तरीके से शास्त्रों से बताता है। और पिताजी को तुरंत वैराग्य आता है, जंगल में चले जाते हैं और पुत्र देखता है अभी तो पिता भी नहीं है, तो माँ के पीछे लग जाता है कि पैसा दो। माँ बोलते पिता के पास नहीं तो मेरे पास कहाँ से आएगा। तो दोनों में रोज झगड़ा चालू हो जाता है, माता बड़ी परेशान हो जाती है और पुत्र का इस प्रकार का बर्ताव देख के अपना प्राण जो है त्याग कर देती है। अभी ये बेटा माँ नहीं पिता नहीं तो अपनी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, गाँव में चोरी चपाटी करता है, बहुत गलत तरीके से पैसा कमाता है और अंत में इस प्रकार का गलत जीवन जीते जीते उसका मृत्यु हो जाता है, क्योंकि कोई अच्छी आदत नहीं थी उसमें। और जब मृत्यु हो जाती है क्योंकि इतने गंदे कार्य किए थे उसने, तो उसकी जो आत्मा है वो मुक्त नहीं हो पा रही थी। तो जो भाई था गोकर्ण, उसको पता चल जाता है, वो अपने पिता को बोलता है कि अपना जो भाई है उसका मृत्यु तो हो गया परंतु इतनी गंदी आदतें थी, काशी में उसका श्राद्ध करने पर भी उसको मुक्ति नहीं मिल रही, तो कुछ करना पड़ेगा। तो शास्त्र पढ़ाई करके आ जाता है, गोकर्ण बोलता ठीक है मैं उसकी व्यवस्था करता हूँ। और फिर वो जो दुंडुकारी था, एक भूत के शरीर में प्रवेश करके वहीं पर अलग अलग प्रकार से घूम रहा था, रोज सपने में आके लोगों को तकलीफ दे रहा था, तो समझ में आ रहा था कि अभी तक इसकी आत्मा जो है मुक्त नहीं हुई। तो फिर गोकर्ण जो है बोलता ठीक है व्यवस्था करता हूँ, तो खुद बैठ जाते हैं। तो और 7 दिन तक रोज भागवत ग्रंथ को खोल के कथा प्रारंभ करते हैं। और फिर जैसे गोकर्ण रोज एक कथा दिन की पूरी हो जाती थी, तो इस दुंडुकारी का जो प्राण था एक बम्बू के अंदर बंद गया था, और जैसे ही एक दिन की कथा हो जाती थी उस बम्बू की एक गांठ जो है टूट के वो खत्म हो जाती थी। और ऐसे करते करते 7 दिन वो कथा चलती रही, 7वें दिन वो पूरा बम्बू जो है फूट गया और वहां पर जो दुंडुकारी उसका आत्मा था वो मुक्त होके आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक लोक में चला गया। तो इस प्रकार एक इतने पापी जीव को भी कृष्ण कथा जो है उसका उद्धार कर सकती है, उसके सारे दुखों से मुक्ति प्रदान कर सकती है। तो हम तो काफी बार मंदिर जाते हैं, कृष्ण कथा को सुनते हैं, बहुत सारे साधु संतों का संग करते हैं, तो निश्चित रूप से अब अगर हम कृष्ण कथा का आश्रय लेते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी दुख आएंगे, जो भी तकलीफें आएंगी, भगवान उसे निश्चित रूप से दूर कर देंगे। और कृष्ण कथा के और महिमा गाते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। श्रीमद् भागवतम में ही कहा गया है, ये जो कृष्ण कथा इस प्रकार की एक नाव है जिसके अंदर आप बैठेंगे तो बहुत आसानी से इस भौतिक भवसागर को पार कर सकते हैं। तो भागवत के पहले स्कंद के 6वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गया है, एतद्धि अतो चित्ताणा मात्र स्पर्शा चया मुहु भव सिंधु प्लव दृष्टो हरिचर्यान वर्णनम। अगर कोई भगवान की इन दिव्य लीलाओं को सतत श्रवण करता है और अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके इन कथाओं में अपने मन को पूर्ण रूप से लगाता है, तो वह व्यक्ति इस भौतिक भव सागर को बहुत ही आसानी से पार कर जा सकता है। तो ये जो भौतिक जगत है, यहाँ पे हम काफ़ी दुख भोगते हैं, तकलीफें सहते रहते हैं, तो इसको अगर पार करना है तो भगवान की लीलाओं का स्मरण, कीर्तन या कथन जो है उसका आश्रय हमें लेना पड़ेगा। जैसे एक बार एक सास और बहू गांव में प्रवचन चल रहा है करके कथा सुनने, अपने गांव से दूसरे गांव में कथा चल रही सुनने गई, और कथा में महाराज से सुन लिया कि भगवान का नाम जो इतना उसका महिमा है कि अगर आप नाम जपते रहेंगे सतत तो आप इस भव सागर को तार पार कर सकते हैं। तो बहू ने सुन लिया, बड़ी प्रसन्न हुई कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, तो सतत नाम जप करने लगे। सास है, बोले इतना थोड़ा ही होता है, यहाँ तक ठीक है, नाम जप से कुछ शुद्धिकरण होगा, शांति मिलेगी, भव सागर को पार करने की इतनी कहाँ शक्ति है, तो श्रद्धा नहीं थी। तो दोनों वापस घर निकले, कथा के बाद बारिश होने लगा, तुरंत नदी में बाढ़ आ गई, अभी नदी पार करके जाना है। बहू ने सुना था कि नाम जप करने से तो बहुत सागर पार कर सकते, ये नदी कौन सी बड़ी चीज है। सास बोले वो भव सागर अलग है, नदी पानी की नदी है, पैर डालेंगे तो डूब जाएगी। बहू बोली नहीं 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 महाराज, कथा में इतने प्रेम से बताएं, अगर श्रद्धापूर्वक, और मैं जब से कथा सुनी तब से नाम जप ही कर रही हूँ। तो बहू ने तुरंत भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया और अपनी श्रद्धापूर्वक जो है पैर डालने चालू किए, तो भगवान की दिव्य शक्ति से वो नदी को पार कर गई। सास ने देखा परंतु फिर भी देखा नहीं लगभग, क्योंकि उसको श्रद्धा तो नहीं थी, तो पैर डाल नहीं पाई, कोशिश करने का सोच ही रही थी, फिर से बोल रही थी वो तो तर गई, मेरा अगर डूब गई तो, वैसे भी बहुत तो चाहती है जल्दी डूब जाए, तो बेड़ी चिंता में फिर भी किसी प्रकार से पैर डालने का प्रयास किया, तुरंत बह गई, क्योंकि श्रद्धा नहीं थी नाम के ऊपर। तो भगवान का कथा सुनना यानी केवल सुनना नहीं, सुनने से लाभ, सोते हुए जागते हुए सुनने से लाभ तो होगा ही थोड़ा बहुत, लेकिन श्रद्धा पूर्वक अगर सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से भगवान की कथा जो है इस भवसागर से हमें पार करने के लिए मदद कर सकती है। और इसलिए ये भागवत का कथन कि केवल भगवान की कथा मात्र सुनने से इस भौतिक भवसागर को हम पार कर सकते हैं। और एक सुंदर वर्णन भागवत में आता है, तीसरे स्कंद में एक सुंदर कथा आती है, जब कर्दमुनि और देवहूति जो स्वयं भगवान कपिल देव के माता पिता हैं, और जैसे ही कर्दमुनि और देवी का विवाह हो जाता है देवहूति का, तो तुरंत कर्दमुनि तो भूल जाते कि विवाह भी हुआ क्यों नहीं, तुरंत वो तपस्या में दिव्य स्तर पर चले जाते, कई साल निकल जाते हैं, और फिर ध्यान से जैसे आते हैं तो देखते कोई स्त्री बैठी है, तो उसे पूछते देवी यहाँ क्या कर रही हो, वो बोलती मैं तो आपकी धर्मपत्नी हूँ, वो अच्छा शादी भी हुआ था हमारा, तो इतने ध्यान में चले गए थे कि भूल भी गए शादी भी कभी किया था। फिर बोलते क्षमा करना, मैं तुरंत ध्यान करने बैठा भगवान को तो सारा विश्व का चीज़ भूल गया, तो बताइए मैं तो आपको कुछ संतुष्ट नहीं कर पाया, आप मेरी पत्नी हैं, आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करूँगा, ये गृहस्थ होकर कोई मेरी जिम्मेदारी है। तो तुरंत अपनी शक्ति से एक पुत्र जो है प्रदान करते उसे, और जैसे पुत्र उसे दे देते तुरंत निकल जाते हैं, ऐसा नहीं कि फिर से अटक जाते, अभी ध्यान से वापस आ गए, अभी इतनी सुंदर पत्नी है तो रुक गए नहीं, वापस आ गए, पत्नी है और उनके पति है तो उसकी इच्छा पूर्ण करना उनका धर्म बनता है, तो वो इच्छा पूर्ण एक पुत्र जो है प्रदान कर देते हैं और तुरंत निकल जाते हैं अपने कार्य में। और फिर देवहूति अपने पुत्र को देखते देखते अपना जीवन निकालते उसे बड़ा करते, और पुत्र कोई साधारण नहीं था, स्वयं कपिल जो भगवान के ही स्वयं अवतार हैं। और फिर ये कपिल देव जब अंतिम समय देवहूति का आता है तो उसे उपदेश करते हुए सुंदर श्लोक बोलते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणादश्वपवर्गवर्त्मणि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनोक्रमश्यति। तो कपिल देव स्वयं भगवान सामने बैठे हैं, फिर भी वह अपनी माता को गुणगान कर रहे हैं कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रत्कर्ण रसायन कथा, कि भगवान की कथाओं का रस अगर कर्ण से आप सुन लेते हो तो इस भौतिक सारे दुखों से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और धीरे धीरे अनुक्रमश्यति जो भक्ति है वह क्रमशः आपके हृदय में जो है प्रकट होगी। तो माता स्वयं भगवान का दर्शन कपिल का कर पा रही है, फिर भी भगवान उसे समझा रहे हैं कि मेरे दर्शन से मेरी लीला जो कथा है, नाम है, उसका सतत कानों से अगर श्रवण आप करते हैं तो आप इस भवसागर से मुक्त होकर भगवान के चरणों को प्राप्त कर सकते। तो स्वयं भगवान भी अपने रूप से ज्यादा नाम को और गुण को और लीलाओं का गुणगान जो है वहां पर कर रहे हैं और उसे समझा रहे हैं कि धीरे धीरे आपके हृदय में भक्ति जो है निर्माण होगी और भगवान को आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार ये जो भगवान की लीला है उसकी महिमा बहुत सुंदर तरीके से इन शास्त्रों में कही गई है। तो सर्वप्रथम जो उद्दिष्ट था अपना कि कृष्ण कथा के कारण अपने दुखों की मुक्ति होती है, उसको यहाँ पर हम विराम देते हुए अगली जो बात कही गई है, ये जो भगवान की लीला है, उनका जो नाम है, उनकी जो सुंदर गुण है, इन सब का श्रवण करने से, कथन करने से, स्मरण करने से हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए भी एक सुंदर जो श्लोक श्रीमद् भागवत में आता है जो काफी बार हम गाते हैं, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयतस्तोय भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। तो यहां पर कि जो भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में हर एक व्यक्ति के हृदय में है, जो सबके हित चिंतक हैं, जो शुद्ध भक्त बड़ी प्रेम से अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए उनके लीलाओं को सुनने का प्रयास करता है, उस व्यक्ति को भगवान जितनी भी उसके हृदय में भौतिक इच्छाएं उसे नष्ट कर देते हैं। तो कृष्ण कथा सुनने से अपने हृदय में जो भी आसक्तियां या भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण है, उस सारे जो अनर्थ हैं उसको नष्ट करने की शक्ति भगवान का नाम, उनकी गुण और उनकी लीलाएं जो है रखते हैं। जैसे एक सुंदर कथा आती है, एक बार जनक महाराज जो भगवान श्री रामचंद्र के ससुर थे, तो उन्हें एक बार पूछा जाता है कि महाराज आप इतने बड़े राजा हैं, इतनी भौतिक कार्य आपको करने पड़ते हैं कि रोज जाके राज्य संभालो, इतनी सारी चीजें प्रजा के साथ होती रहते हैं, गुंडे आते हैं, चोर आते हैं, डकैत आते हैं, दूसरे राजाओं के साथ युद्ध करना है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है उसको निगोशिएशन करना है, बहुत सारे कार्य रोज राजा के रूप में आपको करना है, इतना करते हुए आप किस प्रकार भगवान का ध्यान कर पाते हैं? एक राजा होकर भी सतत आपका चिंतन जो है भगवान के चरणों के प्रति होता है, आप कैसे कर पाते हैं? आपके मन को ये भौतिक कार्य छूते नहीं क्या? यह भौतिक आसक्ति आपको क्यों नहीं आती है? तो जनक महाराज बहुत सुंदर तरीके समझाने के लिए बोलते हैं कि आइए मैं आपको कल इसका जो राज है बताता हूं। तो सारे जो शहर में जितने भी संत थे, सारे संतों को वो आमंत्रण देते हैं कि कल राज महल पर आप सबको जो है पंच पकवान का भोजन जो है दिया जाएगा। तो राजा का जब आमंत्रण आता है तो पूरा नगरी से लोग वहां पर पहुंच जाते हैं कि राजा का स्वयं आमंत्रण आए, पंच पकवान का प्रसाद राजभोग प्राप्त होगा। तो बड़े आनंद से ऋषि वहां पर जमा हो जाते और सबको महल में विशेष स्थान देकर, आसन देकर, सुंदर रूप से सारे पकवान जो परोसे जाते हैं और सब अभी प्रार्थना करते हुए बस खाने वाले हैं। तो महाराज जनक वहां पर आते हैं और बोलते हैं एक केवल मिनट सुनिए, एक सूचना मैं देना चाहता हूं। तो सारे ऋषिगण सोच रहे थे शायद से जनक महाराज सबको आशीर्वाद मांगेंगे, क्योंकि सब ब्राह्मण हैं, हम प्रसाद पाते ही उन्हें आशीर्वाद दे देंगे या प्रथम पहले प्रार्थना उनके लिए करेंगे फिर प्रसाद ले लेंगे। परंतु जनक महाराज कुछ ऐसी आकाशवाणी या ऐसे अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आप जहां पर बैठे हैं बहुत सुंदर व्यंजन आपके ताट में प्लेट में यहाँ पे परोसे गए हैं, परंतु आप जहां बैठे हैं उसके बराबर ऊपर जो है एक तलवार धागे से लटकी हुई आपके सर के ऊपर है। तो तलवार का नाम लेते तुरंत सब सारे पकवान छोड़ के ऊपर देख लेते हैं और देख पा रहे हैं कि बराबर सर के ऊपर, मान लो ये धागा टूट गया तो उनका सर बस कटने ही वाला है। तो बड़े चिंतित हुए, भाई इतने पकवान तो यहाँ व्यंजन दिए, खाने को आमंत्रण दिया है, ऊपर तलवार लटका दी है और देखते पता चला धागा इतना छोटा है तो कभी तो टूटेगा। गिर जाएंगे तो मरना निश्चित है, और यहाँ पर तो राजा आदने उठ भी नहीं सकते। तो राजा बोलते हैं अभी प्रारंभ करो, खा सकते हम। तो जो खाना इतने पकवान व्यंजन रखे थे खाने के लिए, आधा घंटा आदमी प्रेम से खा सकता था, लगभग 2 से 3 मिनट में किसी प्रकार वो खा के बस अपना खाना पूर्ण करते हैं और तुरंत राजा को देखते हैं कि क्या उठ जाऊं। राजा बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, एक प्रश्न है कि उठने से पहले एक बार बताओ खाना कैसे लगा, स्वादिष्ट था, तीखा था, खट्टा था, मीठा था। वो सब बोलने लगे महाराज खाना तो हमने खा लिया, तीखा मीठा खट्टा खाना सोचने के लिए समय कहाँ है, वो तलवार दिख रहा है हमको। तो अगर इतना तीखा लग रहा है सोचते बैठेंगे तो कब का नीचे आएगा तलवार, गला कट जाएगा। हमने तो खा लिया, मीठा खट्टा क्या था वो सोचने के लिए भी समय नहीं था हमारे पास। तो महाराज बोले ठीक है अभी उठ सकते हम। और फिर जनक महाराज उसे उन्हें समझाते कि देखो इतना सुंदर व्यंजन आपके सामने परोसा था, फिर भी आप वो खाने में आपका कोई ध्यान नहीं था, आपका ध्यान वो तलवार के ऊपर ही था कि कब वो धागा टूटेगा और गिर जाएगी तो गला कटेगा, उससे पहले खाना खा के निकलना है। वो अच्छा है बुरा है खट्टा मीठा कुछ नहीं आप उसको टेस्ट कर पाए, बस खा लिया अपने वो समय के अंदर। तो उसी प्रकार जब भी मैं ये राज्य चलाता हूँ मेरा ध्यान सदैव भगवान के चरणों के ऊपर रहता है, तो मैं राज्य जब चलाता हूँ तो बस चलाता हूँ, चल रहे। जैसे आपने वो खा लिया, कितना खाने में उसके रुचि लगा, क्या था खट्टा कुछ भी नहीं आप उसको टेस्ट कर पाए, उसी प्रकार मैं राज्य बस चला रहा हूँ, मेरा ध्यान तो केवल भगवान के चरणों के ऊपर है, उसको मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, बस वो चल रहा है, परंतु ध्यान कृष्ण के चरणों के ऊपर है तो सारे कार्य जो है अपने आप हो जाते हैं। तो इस प्रकार वो अपने सारे भक्तों को समझाते हैं कि अगर हमारा ध्यान भगवान के ऊपर पूर्ण चित्त एकत्रित है तो इस विश्व की जो आसक्तियाँ हैं, जो अनर्थ है, जो भी अंदर बुरी इच्छाएं हैं, वो सारे अपने आप धीरे 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 नष्ट हो जाते हैं। उसे अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल भगवान का नाम, उनका गुण, उनकी सारी कथाएं अगर सुनते रहेंगे तो अपने आप अपना हृदय जो है शुद्ध होते जाएगा और एक दिन हम भगवान के चरणों को जो है आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। और एक जनक महाराज जी का ही कथा आता है कि किस प्रकार कि कृष्ण कथा में हम समर्पित होने से, ध्यान करने से केवल हमारे अनर्थ निवृत्ति तो होती ही है, परंतु हमारे अंदर इस जीवन में जो भय है, अलग अलग आसक्तियां हैं, जो शोक है, जो मोह है, अज्ञान है, वो सारा अपने आप निकल जाता है। जैसे भागवतम में कथा है, कहा गया है कि यस्य वै श्रीयमाणानां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पोषः शोक मोह भयापह, कि ये जो भगवान की कथा है वो परम पुरुष कृष्ण की भक्तिर उत्पद्यते, अगर वो सुनने से हृदय में जिस प्रकार अंकुर उत्पादित होता है, अगर भक्ति का अंकुर उत्पादित कथा सुनने से होता है तो शोक मोह भयापह, जो आसक्त शोक इस जगत में हमको आ रहा है, इग्नोरेंस या मोह में हम चले जाते हैं, या डर हमें लगता है कि हमने जो प्राप्त किया है वो खो देंगे, ये तीनों चीजें एक साथ जो है नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार हमारा जो हृदय का बहुत बड़ा अनर्थ, शोक, मोह और भय, वो केवल कृष्ण कथा का स्मरण या श्रवण करने से जो है तुरंत जो है नष्ट हो जाता है। तो जनक महाराज के जीवन की एक सुंदर कथा आती है। एक बार वो कृष्ण भगवान या रामायण, वो समय तो अलग अलग रूप से कहा जाता था, तो कथा सुन रहे थे। तो एक दिन बहुत सारे सैनिक दौड़ते दौड़ते आते हैं, महाराज महाराज हमारा जो गोडाउन था जहाँ पे इतनी सारी संपत्ति, उसे आग लगी है। महाराज तो कथा भागवत श्रवण में लगे थे, वो क्या सूचना ही उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, वो कथा सुन रहे थे सुन रहे थे सुन रहे थे। वो सैनिक बार बार बताने का प्रयास कर रहे थे कि हमारे सबसे अधिक जहाँ पे संपत्ति रखी थी उस गोडाउन को आग लगी है, सब नष्ट हो रहा है, कुछ कीजिए आप, जब तक आज्ञा नहीं देंगे कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ तो बोलिए। परंतु जनक महाराज कथा में इतनी रुचि प्राप्त हुई थी, वो सुन भी नहीं पा रहे थे कि कोई कुछ बोल रहे हैं, और अंतिम कथा समाप्त हो जाती है और सैन्य समझ जाता कि कुछ सुनने वाले नहीं, वो अपना कार्य किस प्रकार बुझा सकते कर देते आते हैं। कथा होने के बाद महाराज को बताया जाता कि इस प्रकार जो गोडाउन है पूरा नष्ट हो गया। महाराज फिर भी हंसने लगते, ठीक है भगवान की इच्छा से आया था, भगवान उनकी इच्छा से लेके गए। वो ये नहीं बोले कि मैंने कुछ आज्ञा भी नहीं दिया। तो वो केवल कृष्ण कथा में इतने मग्न थे कि भौतिक स्तर पर कुछ हो रहा है उसका उन्हें ध्यान भी नहीं था। तो इस प्रकार अगर हम सदैव भगवान का चिंतन कर पाते हैं या करने का प्रयास करते हैं तो हमारे हृदय में जो भी आ सकती है, इसलिए यहाँ शोक मोह भयापह तीनों चीज एक साथ जो है दूर हो जाते हैं और केवल भगवान की कथाओं में हम रुचि प्राप्त कर पाते हैं। तो ये बहुत सुंदर जो फल है हमें केवल भगवान की कथा श्रवण करने से जो है प्राप्त हो सकता है। आगे और श्रीमद् भागवतम में एक सुंदर वर्णन किया गया है कि कृष्ण कथा की महिमा करते करते कि जिस प्रकार कोई तालाब है जो बहुत ही गंदा पानी अगर उसमें है और उसमें हम बड़ा प्रयास करके उसको साफ करने का प्रयास अगर करते हैं तो काफी दिन महीने शायद लग जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा तालाब है उसको साफ सफाई करना है और मनुष्य व्यक्ति को कितना करेगा, जितना भी निकालेंगे उतना मिट्टी है गंदगी हो तो आता ही रहेगा। परंतु उसको अगर साफ करना है, अगर आकाश से बारिश हो जाता है तो कुछ क्षणों में वो बारिश है उसको धुला के साफ कर देती है। तो श्रीमद् भागवतम इस उदाहरण को समझाते हुए सुंदर वर्णन करते हैं कि हमारे हृदय में इतने अनर्थ है, हम कितना प्रयास करेंगे उसको साफ करना बहुत मुश्किल है, परंतु अगर ऊपर से यानी भगवान की ओर से कथा का जब प्रारंभ होता है, शुद्ध भक्तों के मुख से जब कथा सुनने को शुरू हो जाती है तो वो जो कथा है वो बारिश की तरह है जो उस तालाब को कुछ क्षणों में जो है साफ करके वहां आपको आपको स्वच्छ पानी आप उस तालाब में देख सकते हैं। तो वैसे ही अपने हृदय में कितने भी अनर्थ क्यों न हो, भगवान की कथाओं को शुद्ध भक्त के मुख से हम सुनते हैं तो सारे जो अनर्थ हमारे हृदय में है कुछ क्षणों में जो है नष्ट हो जाते हैं और शुद्ध रूप से जो पानी कृष्ण कथा है, कृष्ण की लीला है, वो हमारे हृदय में भी उस भगवान का दर्शन जो हम कर पाते हैं। तो इसलिए कृष्ण कथा जो है हमारे हृदय को क्षणों में जो है शुद्ध कर जाती है। एक महत्वपूर्ण जो फल है कि या महिमा इस कृष्ण कथा की यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में की गई है। और एक सुंदर जो फल प्राप्ति या कृष्ण कथा की महिमा के रूप में हम देख सकते हैं, ये जो भगवान की कथा जो है बाकी सारी जो विधियां यहाँ पर दी गई हैं उन सारी विधियों में कथा का श्रवण कीर्तन और स्मरण सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। जैसे हमें अलग अलग समय पर घर प्रवेश करते हैं तो हम यज्ञ करते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के विधि विधान करते हैं, स्कूल जाते हैं तो उस समय भी हम कुछ संस्कार करते हैं, तो हर कार्य में हमें अलग अलग प्रकार के यज्ञ कार्य या कुछ शास्त्र के विधि विधान और संयम पालन करना पड़ता है और करना भी चाहिए। परंतु ये सारी विधियां हैं वो हमें कुछ मात्रा में ही फल दे पाती हैं, उसे बहुत अधिक लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है। परंतु कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन और स्मरण ये तीन विधि ऐसी हैं जो बाकी सारी क्रियाओं से उच्च स्तर पर कही गई हैं। और इसलिए भगवद गीता में भी एक श्लोक आता है जहां पर हम सुनते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेशां मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते माम समय युक्त तमे मथा। भगवान छठे अध्याय के इस 46वें श्लोक में इस सुंदर श्लोक में बताते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेशां, सारे जो योगी हैं अलग अलग प्रकार से ध्यान कर कर मुझे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उन सारे योगियों में तो ध्यान करने वाले, ज्ञान प्राप्त करने वाले या कर्मयोग करने वाले सारे योगी हम एक साथ पकड़ लेंगे यहां पर, तो इन सारे योगियों में मद गतेर अंतरात्मना, जो अंतरात्मना जो मन में मेरा सतत स्मरण करता है, पूजन करता है श्रद्धापूर्वक श्रद्धावान, तो समय युक्त तमे मतः, उससे ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो जो श्रद्धापूर्वक भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण करता है, अंतर आत्मना मन में उसका स्मरण करता है, ऐसा व्यक्ति जो है बाकी सारे योग अपने आप पूर्ण करके जो है सबसे उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। यह बात भगवान स्वयं गीता के 6वें अध्याय में हमें समझाते हैं। इसलिए यह जो कृष्ण कथा है एक केवल भगवान का साधारण नाम या गुण या रूप या लीला नहीं है, इस सारे विश्व को कल्याण करने वाली यह कथा है। तो इसकी महिमा जितनी भी हम करेंगे उतनी कम है, और इसका और कुछ उदाहरण देते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो कृष्ण कथा के तीन मुख्य लाभ अभी तक हमने देखे कि कृष्ण कथा के कारण हमारा हृदय जो है शुद्ध होता है, कृष्ण कथा से हमारे जीवन में आने वाले सारे दुख जो है वो नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण कथा बाकी सारी विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि है, और कृष्ण कथा जो है हमें भगवान के प्राप्ति का एकमेव मार्ग है। अगर स्वयं भगवान की हमें प्राप्ति करनी है तो इस कथा का श्रवण कीर्तन स्मरण करना अत्यावश्यक है। हम देखते हैं हमारे संस्थापक ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जब वो पाश्चात्य देश में गए और काफ़ी आयु की लगभग 70वीं समय वह जब वहाँ पहुँचे और देखा कि यहाँ पर तो कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम क्या, कृष्ण कौन है ये भी नहीं जानता है, परंतु गुरु की आज्ञा थी तो गुरु की आज्ञा को लेकर वहाँ पे वो प्रयास कर रहे थे, और प्रयास करते करते कुछ लोग मिल गए जिनको उन्होंने अपनी कथा से, भागवत की कथा से और हरिनाम का जो है उसके साथ गाते 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 इतना शुद्ध कर दिया कि आज हम जब देखते इस्कॉन में जो लोग रास्ते पे रोज चार नियमों का निश्चित रूप से जैसे तोड़ते थे, मतलब रोज नशा करते थे, रोज गांजा पीते थे, रोज मांसाहार करते, व्यभिचार करते, चाय और कॉफी सब कुछ पी के ड्रग्स सब कुछ करते थे, तो ऐसे लोग जो है श्रील प्रभुपाद की शुद्ध वाणी सुनकर, उनका हरिनाम कीर्तन और कथा सुनकर उस स्तर तक पहुंच गए कि आज इस संस्था को चलाने के लिए सबसे उत्तम स्तर पर यही वैष्णवगण जो है बैठे हैं और इस सारे विश्व को अभी भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, और इतने सुंदर रूप से इस संस्था का कार्य सारे विश्व में फैला रहे हैं। कृष्ण नाम का गुणगान, कृष्ण कथा का गुणगान, कृष्ण के सारे लीलाओं का गुणगान, और इस सारे जो विग्रह है, मंदिर है, अनेक प्रोजेक्ट्स है, इस सारी विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार केवल भगवान के नाम और गुण और रूप लीलाओं का जब आश्रय लेते हैं तो यह नाम गुण रूप लीला जो है हर व्यक्ति को भगवान के धाम जाने के लिए पात्र बनाता है। तो वह शक्ति भगवान की कथा में या उनके नाम गुण रूप लीला में है, तो इस कथा को सदैव हमें सुनना चाहिए। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर हम सुनकर यहाँ पर अंत करेंगे, तो ये कथा कीर्तन और भगवान का नाम का गुणगान केवल शास्त्रों में किया गया है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जितने भी शुद्ध लोग यहाँ पर हमने इतिहास में सुन देखे हैं, तो हर व्यक्ति के जीवन का यश का जो सीक्रेट है, गुह्य सूत्र है, वो कृष्ण नाम का, कृष्ण कथा का आश्रय है। बाकी चीज तो किसी ने संन्यास ले लिया, या किसी ने मंदिर बांध दिया, किसी ने संस्था स्थापित की, ये सारी चीज तो करते रहेंगे लोग, परंतु यश कब प्राप्त हुआ जी, या जीवन का वास्तविक जो उद्दिष्ट है कब सफल हुआ हम बोलते हैं, जब वो व्यक्ति कृष्ण के नाम में, गुण में, लीलाओं में, रूप में पूरा तल्लीन हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि इसका जीवन पूर्ण हुआ। और यह सारे जितने भी संत हैं, ऋषि मुनि हैं, उनका जीवन जब भी सफल हुआ तो उन्होंने यही कहा है कि भगवान के नाम का मैंने आश्रय लिया, या उनकी कथाओं का आश्रय लिया, या उनके बारे में हमने ध्यान किया, इसीलिए मैं इस जीवन में शुद्ध हो पाया, और उसी का ध्यान करते करते मैं अभी भगवत धाम जा रहा हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी अगर उनका जीवन हम देखेंगे तो अंत के समय जब वो लगभग 77 साल की उम्र थी और वृंदावन धाम में बेड पर थे, 3 महीने से कभी अन्न ग्रहण नहीं किया था, पानी ग्रहण नहीं किया था, परंतु अंतिम के कुछ घंटों में भी वो क्या कर रहे थे, तो उनके सारे शिष्य जो है डेक्टाफोन लेके उनके मुंह के पास खड़े थे, और श्रील प्रभुपाद जी 10वें स्कंद के 35वें अध्याय का अलग अलग श्लोक बोलकर तात्पर्य जो है खुद दे रहे थे, और शिष्य ने उसको रिकॉर्डिंग करके श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का 35वां अध्याय जो है वो कंप्लीट कर रहे थे, पूरा कर रहे थे। तो ये स्थिति जब 77 साल की उम्र में 3 महीने से उन्होंने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं है, डॉक्टर आके उनको देख रहा था तो वो चकमा गया कि इस व्यक्ति के अंदर प्राण अभी तक कैसे रहे, किसके अंदर तो कुछ नहीं, अगर थोड़ा सा दबाऊंगा तो ये हड्डी पसली इसकी टूट जाएगी, इतना दुबला पतला होगा, 3 महीने से कुछ खाया नहीं पिया नहीं, परंतु केवल इच्छा शक्ति से कि भगवान का जो गुणगान है ये श्रीमद् भागवतम उसको पूरा करना है, उस इच्छा शक्ति से दिनों दिनों तक वो कथा कर रहे थे और उनके शिष्य हुए उसको डिक्टाफोन में रिकॉर्डिंग करके उस 10वें स्कंद को पूरा कर रहे थे लिखित स्वरूप में, ताकि हम लोग आज यहाँ बैठ के इस 10वें स्कंद की कथा सुन सकें। तो ये जो शुद्ध भक्त हैं जिन्होंने सदैव भगवान के नाम गुण रूप और लीलाओं का आश्रय लेके उनका श्रवण किया है, कथा किया है, स्मरण किया है, और इसीलिए उनका जीवन है वो पूर्ण रूप से हमें शुद्ध दिखता है और अंतिम समय में वो भगवान का स्मरण कर पाते हैं। तो यही उनके जीवन से हमें महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमारे अनर्थ तो कृष्ण कथा से नष्ट हो जाएंगे, हमारे दुख तो कृष्ण कथा से नष्ट हो जाएंगे, परंतु साथ ही साथ इस जीवन से मुक्त होकर परमेश्वर या भगवान के धाम वापस जाने के लिए भी हमें कृष्ण नाम का उनके लीलाओं का स्मरण करना आवश्यक है। तो इन कथाओं के साथ इन भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हुए यहाँ पर मैं आज की कथा को यहाँ विलंब देता हूँ। हरे कृष्णा। तो अगले 2-3 मिनट है, तो उस 2-3 मिनट में थोड़ी सी यहाँ पे इस्कॉन की जो गतिविधियाँ है उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो बराबर 12 बजे यहाँ पर भगवान का जो सुंदर यहाँ पे दर्शन है खुल जाएगा, उनके भोग हैं वो आपको सब वहाँ पर निकाले जाएंगे, और उसके बाद भगवान की आरती होगी जिसके बारे में हम वहाँ पर सब खड़ा रह के भगवान की आरती एक साथ कोई भक्त आगे लीड करेगा और हम पीछे पीछे उसे गाते रहेंगे, और तत्पश्चात भगवान के नाम का कीर्तन यहाँ पर लगभग 12 बजे से 12:30 तक हम आरती हरिनाम कीर्तन और फिर नरसिम्हदेव की आरती, इस प्रकार से आधा घंटा यहाँ पर कार्यक्रम चलेगा। तो आप सब इस आधे घंटे के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। तत्पश्चात अब करने वाले हैं, तत्पश्चात 12:30 बजे जो यहाँ पर ललिता भवन है वहाँ पर जिन भक्तों को कूपन्स यहाँ पर कथा सुना इसके लिए दिया है उनके लिए अलग से प्रसाद की व्यवस्था की है, और बाकी भी भक्त जो भी यहाँ पर आए उनके लिए भी प्रसाद की व्यवस्था है। तुरंत वहाँ पर जाके 12:30 से लगभग 2 बजे तक महाप्रसाद वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हर रविवार के दिन यहाँ पर हम सुबह 4:30 बजे मंगल आरती, उसके बाद 7 बजे श्रृंगार आरती, फिर 8:30 से 9 एक घंटे की भागवत कथा, और फिर 9 बजे से हरिनाम कीर्तन यहाँ पे चलता है, और 11 से 12 ये संडे फिश क्लास यहाँ पर होता है, और आरती के बाद कुछ भक्त यहाँ पे जो सुंदर हमने वृंदावन जिसे मिनी वृंदावन करके भी अभी पहचाना जाता है, तो सारे लोग यहाँ पे वृंदावन के अलग अलग तीर्थों का दर्शन भी कर सकते हैं, वहाँ पे जाके सुंदर कथाएं कोई भक्त आपके साथ आते हैं उन्हें वहाँ पर भी सुन सकते हैं, या फिर प्रसाद पाकर उसके बाद आपको चाहिए तो अंदर काफ़ी सुंदर तरीके से भगवान के बहुत सारे लीलाओं के डायरामाज हैं, अलग अलग तीर्थ स्थान, यमुना नदी, केशी घाट, राधा दामोदर मंदिर, कालिया घाट और अनन्य भगवान के जितनी भी लीलाएं हुई है सारे लीलाओं के तीर्थ स्थान वहाँ पे स्थापित किए हैं। गोवर्धन पर्वत है, उनके आजू बाजू में बहुत सारे तीर्थ स्थान है, राधा कुंड, श्याम कुंड, मुखारविंद, पोछरी का लोटा बाबा, ऐसे अनेकों तीर्थ स्थान वहाँ पे स्थापित किए हैं। तो इन सारे तीर्थों का आप दर्शन कर सकते हैं और अपनी चेतना को यहाँ पर सदैव कृष्ण के स्मरण में लगाते हुए अपने को शुद्ध करने का जो अवसर आपको यहाँ पर आके मिला है उसका पूरा आप लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आप सभी अभी यहाँ पर खड़ा रह के मंदिर के सामने भगवान के दर्शन खुलने वाले हैं, वहाँ पे खड़ा रह सकते हैं और आरती में सहभाग कर हो सकते हैं। हरे कृष्णा। कुछ सोचा?